एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
खटखटाओ तुम दरवाजे को, खटखटाओ तुम दरवाजे को,
तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा।
मांगो तो तुमको मिल जाएगा,
जहाँ कहीं दो या तीन जमा होते हैं, वहीं सारे यीशु नाम से बरकत पाते हैं। मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
खटखटाओ तुम दरवाजे को, खटखटाओ तुम दरवाजे को,
तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा।
मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जो चाहो मांगो मेरे स्वर्गीय पिता से। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जो चाहो मांगो मेरे स्वर्गीय पिता से। मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
खटखटाओ तुम दरवाजे को, खटखटाओ तुम दरवाजे को,
तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा।
मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे। मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे दास, हम तेरे लोग तेरे पास आते हैं, तेरा वचन सुनने के लिए आए हैं। पिता हमारे मन हृदयों को खोल और तेरा आत्मा से चला कि हम तेरे वचन को तेरे संवाद को समझ सके और तेरे इच्छा मुताबिक तेरे रास्ता में जीवन यापन करने सके। पिता मेरे संग हो जब मैं तेरा वचन को प्रस्तुत करता हूँ, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला, मुझे तेरा सामर्थ दे और मेरे हरेक सुनने वालों के संग हो पिता, वे तेरे वचनों को सुन सके और समझ सके और तेरे रास्ता में चलने सके। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का मेरा संवाद का शीर्षक है यूसुफ की कब्र में। आखिर में यीशु विश्राम कर रहा था, शर्मंदगी और उत्पीड़न का पूरा लंबा दिन समाप्त हो गया था। जब सूरज की अंतिम किरणें पवित्र शब्बत में प्रवेश करने जा रही थी, परमेश्वर का पुत्र शांतिपूर्वक यूसुफ के कब्र में लेटा हुआ था। उसका काम समाप्त हो चुका था, उसके हाथ शांति से जुड़ चुके थे, वह पवित्र शब्बत की घड़ियों में विश्राम कर रहा था। सृष्टि की रचना करते समय जब काम समाप्त हुआ था, तब पिता और पुत्र दोनों ने शब्बत को विश्राम किया था। जब आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, जैसा हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:1 में, उस अद्भुत सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता और सारी स्वर्गीय सेना अत्यंत ही आनंदित हुए थे। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे, अय्यूब 38:7। अब यीशु ने उद्धार के कार्य को समाप्त किया और यद्यपि उसके जो प्रिय लोग इस पृथ्वी पर थे उन्हें उसके लिए अत्यंत शोक था, फिर भी स्वर्ग में आनंद था। स्वर्गीय लोगों की आंखों में सबसे अधिक महिमामय दृश्य भविष्य का वायदा था। अपने नियत स्थान पर फिर से लाई गई सृष्टि, उद्धार पाई हुई जाति जो पाप पर विजय हो गई है, अब फिर कभी पाप में नहीं गिरेगी। और यह परिणाम मसीह के कार्यों को संपूर्ण करने के द्वारा प्राप्त हुआ था। इसे परमेश्वर और स्वर्गदूतों ने भी देखा। इस दृश्य के साथ जिस दिन यीशु ने विश्राम किया था, उस विश्राम दिन का संबंध सदा सदा के लिए जोड़ दिया गया था, क्योंकि उसका काम खरा है और जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। व्यवस्था विवरण 32:4 और स्वभाव देशक 3:14 यह कहती है। जब वहां पर ऐसा होगा कि जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं, प्रेरितों के काम 3:21। सृष्टि किए हुए शब्द को जिस दिन यीशु ने यूसुफ के कब्र में विश्राम किया था, वह दिन सदा के लिए विश्राम और आनंद का दिन रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी उस दिन मिलकर महिमा और स्तुति करेंगे, जैसा कि लिखा है, एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक, यशाया 66:23, देश देश के बचाए गए लोग खुशी से सिर झुकाकर परमेश्वर और उसके मेमने की आराधना करेंगे। क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले दिन के अंत में भविष्यवाणी के पूरे होने का ताजा प्रमाण दिया गया था और मसीह के ईश्वरत्व पर एक नई गवाही दी गई थी। जब क्रूस पर से अंधेरा छट गया और मुक्तिदाता के मुख से मरते समय वचन निकला था, उसी समय एक और शब्द सुनाई दिया था, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है, मत्ती 27:54। ये शब्द फुसफुसाहट के रूप में नहीं कहे गए थे। सभी की आंखें उस ओर मुड़ गई थी जिधर से यह आवाज आई थी। किसने ऐसा कहा था? यह एक सूबेदार था, एक रोमी सैनिक, मुक्तिदाता का ईश्वरीय धीरज और उसके होठों पर विजय के शब्दों द्वारा उसकी अचानक मृत्यु ने इस मूर्ति पूजक को अत्यंत प्रभावित किया था। क्रूस पर लटक रहे टूटे और घायल शरीर को सूबेदार ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अपने विश्वास को प्रकट करने से वह अपने आप को रोक ना सका। इस प्रकार से फिर प्रमाण दिया गया था कि हमारा उद्धारकर्ता अपने आत्मा की वेदना के प्रतिफल को देखे। उसकी मृत्यु वाले दिन तीन मनुष्य जो एक दूसरे से भिन्न मत रखने वाले थे अपने विश्वास का इजहार किया था। एक वह जो रोमी सेना का अधिकारी था और दूसरा वह जो मुक्तिदाता के क्रूस को उठाकर चल रहा था और तीसरा वह जो उसके बगल में क्रूस पर लटकाया गया डाकू था। जब शाम होने को आई तब कलवरी पर ऐसी शांति छाई हुई थी जो इस धरती की नहीं लगती थी। भीड़ वहां से जा चुकी थी और बहुत से लोगों में एक प्रकार का परिवर्तन नजर आ रहा था। जैसे वे सुबह थे वैसे शाम को नहीं रह गए थे और वे लोग यरूशलेम को लौट गए। बहुत से लोग तो मसीह से घृणा करने के वजह से नहीं बल्कि तमाशा देखने के लिए वहां पर जमा हो गए थे। अभी भी याजकों के आरोपों को वे सही मानते हुए मसीह को एक अपराधी समझ रहे थे। एक अनजानी उत्तेजना के मातहत वे लोग मसीह के विरोध में जाती हुई भीड़ में शामिल हो गए थे। परंतु जब पृथ्वी पर अंधेरा छा गया था और उनके अपने विवेक ने उन्हें ही दोषी ठहराया तो फिर उन्होंने अपने आप को गलत महसूस किया। उस डरावने अंधेरे में कोई भी ठट्ठेबाजी, उपहास और तानों के शब्द नहीं सुनाई पड़ रहे थे। मगर जब अंधेरा छट गया था तो वे चुपचाप अपने घर की राह पकड़ लिए थे। उन्हें यकीन हो गया था कि यीशु झूठा नहीं था बल्कि याजकों के आरोप झूठे थे। और कुछ सप्ताहों के बाद जब पतरस ने पिंतेकोस्त के दिन प्रचार किया तो हजारों की संख्या में लोगों ने मसीह को ग्रहण कर लिया था। परंतु इन सारी घटनाओं को देखने के बाद भी यहूदी अगुओं में कोई बदलाव नहीं आया था। यीशु के प्रति उनकी घृणा में कोई कमी नहीं आई थी। क्रूस पर लटकाने के समय धरती को जब अंधेरे ने घेर लिया था तो वह अंधेरा उतना गहरा नहीं था जितना कि याजकों और अधिकारियों के मनों पर छाया हुआ अंधेरा था। यीशु के जन्म के समय का ज्ञान उस तारे को था जो ज्योतिषियों को उस गौशाले तक पहुंचाया जहां पर वह बच्चा लेटा हुआ था। स्वर्ग में स्वर्गदूतों को मालूम था और उन्होंने बेतलहम के मैदानों में परमेश्वर की स्तुति के गीत गाए थे। समुद्र ने उसकी आवाज को पहचान लिया और उसके आदेश का पालन किया था। रोग, बीमारी और मृत्यु ने उसके अधिकार को पहचाना और अपने शिकारों को उसके लिए छोड़ दिए थे। सूरज उसको जानता था। मसीह को पीड़ा से मरते देखकर उसने अपने प्रकाश को छिपा लिया। चट्टाने उसे जानती थी। उसकी पुकार के समय वे कांप और तड़प उठी थी। मुख प्रकृति मसीह को जानती थी और उसके ईश्वरीयता की गवाही दी। परंतु इसराइल के याजक और अधिकारी परमेश्वर के पुत्र को नहीं जानते थे। फिर भी याजकों और अधिकारियों के मन में शांति नहीं थी। मसीह को मार डालने के अपने उद्देश्य में वे सफल हो गए थे, परंतु जिस प्रकार की विजय की आशा कर रहे थे वैसी विजय वे अनुभव नहीं कर रहे थे। यद्यपि उनके लिए वह महान जीत की घड़ी थी, परंतु फिर भी उनके मन में संदेह ने घर कर लिया था कि देखे अब आगे क्या होता है। उन्होंने उस आवाज को सुन लिया था, पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यूहन्ना 19:30, लुका 23:46। उन्होंने चट्टानों को तड़कते देखा था, उस बड़े भूजाल को महसूस किया था। इसी कारण से उनके मनों में शांति व चैन नहीं था। मसीह जब जीवित था तो लोगों पर उसके प्रभाव को देखकर वे उससे डाह करते थे, और यहाँ तक कि उसकी मौत पर भी उन्हें जलस हो रही थी। जीवित मसीह से वे उतना नहीं डरते थे जितना अब वे लोग मरे हुए मसीह से डर रहे थे। उन्हें भय लग रहा था कि लोगों का ध्यान क्रूस वाली घटना से हटकर किसी और बात में ना पड़ जाए। उस दिन के नतीजे को सोचकर वे डर रहे थे। उन्हीं लोगों के समान पिलातुस भी नहीं चाहता था कि यीशु की लाश क्रूस पर लटकी रहे, इसलिए उसकी अनुमति मिल गई थी और दोनों डाकुओं के पैर तोड़ दिए गए ताकि जल्दी से वे मर जाए। परंतु यीशु को पहले से ही मरा हुआ पाया गया। उदंड सिपाहियों का मन मसीह की बातों को सुनने और उसे देखने के बाद बहुत नरम पड़ गया था, और वे उसके पैरों को तोड़ना नहीं चाहते थे। इस प्रकार से फसह पर्व के नियम के अनुसार परमेश्वर के मेमने का बलिदान पूरा हो चुका था, और उसमें से कुछ भी बिहान तक ना रख छोड़े और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व की फसह की सारी विधियों के अनुसार माने। गिनती 9:12। मसीह को मर चुका देखकर याजक और अधिकारी लोग बहुत ही आश्चर्य करने लगे। क्रूस की मृत्यु तो धीरे धीरे तिल तिल कर मरने की होती थी। यह जानना बहुत कठिन होता था कि अपराधी के प्राण कब निकले। इससे पहले कभी सुनने में नहीं आया था कि क्रूस पर चढ़ाया गया व्यक्ति 6 घंटे के भीतर ही मर गया था। याजकों ने यीशु की मौत को निश्चित करने की ठान लिया। उनकी सलाह पर एक सिपाही ने यीशु के हृदय में भाला छेद दिया। इस प्रकार से जो घाव हुआ था उसमें से 2 धाराएं बह निकली, एक खून की और दूसरी पानी की, और इसे वहां पर खड़े सभी देखने वालों ने देखा। और यूहन्ना इस घटना के विषय में बड़े निश्चित रूप से इस प्रकार लिखता है, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकली। जिसने यह देखा उसी ने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने भेदा है उस पर दृष्टि करेंगे। यूहन्ना 19:34-37। मसीह के जी उठने के बाद याजकों और अधिकारियों ने चारों ओर यह समाचार प्रचारित करा दिया कि क्रूस पर यीशु मरा नहीं था, वह केवल बेहोश हो गया था और बाद में ठीक हो गया। एक और बात चारों ओर फैली कि वास्तव में उसके हाड़ मांस वाले शरीर को लोथ के रूप में कब्र में रख दिया गया था, परंतु रोमी सिपाही का बर्छा मारना इस दावे को झूठा साबित कर देता है। उन्होंने उसके पैरों को इसलिए नहीं तोड़ा था क्योंकि वह मर चुका था। याजकों को संतुष्ट करने के लिए उसकी पसली में भाला ठोका गया था। यदि उसमें से प्राण पहले ही नहीं निकल चुका होता तो हृदय के उस घाव से उसी समय मृत्यु हो गई होती। परंतु बर्छा के छेदने से या क्रूस की पीड़ा से यीशु की मृत्यु नहीं हुई थी। अपनी मृत्यु से पहले वह बड़े शब्द से चिल्लाकर मत्ती 27:50, लुका 23:26 में लिखा है कि वह अपने प्राण छोड़ दिए थे। मसीह की मृत्यु के साथ साथ चेलों की आशाएं भी मर चुकी थी। जब उन्होंने उसकी पलके बंद होते और सिर को लटकते देखा, उसके सिर के बाल खून से लथपथ थे, और उसके हाथों और पांव में जड़ी कीलों को देखा, तो उनके दुख की कोई सीमा ना रही। अंत समय तक उन्हें विश्वास नहीं था कि वह मर जाएगा। इस समय भी उसके मर जाने का विश्वास करना उनके लिए कठिन हो रहा था। शोक में इतने डूब गए थे कि इस घटना के प्रति मसीह की कही हुई बातों को याद नहीं कर पाए। उसकी कही हुई कोई भी बात उन्हें इस समय ढाड़स नहीं बंधा रही थी। उन्हें केवल क्रूस और उस पर खून से लथपथ टंगी हुई लाश नजर आ रही थी। अब उन्हें भविष्य निराश और अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। मसीह में उनका विश्वास समाप्त हो चुका था, परंतु इससे पहले उन्होंने अपने प्रभु से इतना प्यार भी नहीं किया था। इससे पहले उन्होंने उसकी कीमत तथा उसकी उपस्थिति की आवश्यकता को इस तरह से महसूस नहीं किया था। मसीह की मरी हुई देह भी उसके चेलों के लिए बहुत मूल्यवान थी। उनकी इच्छा थी कि वे अत्यंत ही सम्मान के साथ उसकी लाश को दफन करें, परंतु यह नहीं जानते थे कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। रोमी शासन के विरुद्ध राजद्रोह करना बहुत संगीन अपराध था जो मसीह पर लगाया गया था और जिसके कारण उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। इस आपातकाल में यूसुफ अरिमथिया और निकोदिमस चेलों की मदद करने के लिए आगे आए। ये दोनों ही महासभा के सदस्य थे और पिलातुस से भी अच्छी जान पहचान थी। दोनों ही धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने ठान लिया था कि यीशु की लाश को सम्मान के साथ दफन किया जाएगा। बड़े साहस के साथ यूसुफ पिलातुस के पास गया और उससे यीशु की लाश को मांगा। पहली बार पिलातुस को मालूम हुआ कि यीशु वास्तव में मर चुका है। यूसुफ की विनती स्वीकार कर ली गई थी। उधर यहूना को अपने गुरु को दफन करने की बहुत चिंता थी। यूसुफ यीशु की लाश के लिए पिलातुस के आदेश के साथ वापस आया और निकोदिमस बहुत ही मूल्यवान लगभग 50 किलो लोहबान और मुर ले आया ताकि उस पर उस मसाले का लेप लगाया जाए। यरूशलेम के बहुत ही सम्मानित लोगों को भी मृत्यु के समय इतना आदर नहीं दिखाया गया था। चेले लोग इन धनवान अधिकारियों के अपने प्रभु के दफन करने में इतनी रुचि लेने के इस व्यवहार से चकित थे। जब तक यीशु जीवित रहा तब तक ना तो यूसुफ और ना ही निकोदिमस ने खुलकर उसे स्वीकार किया था। वे जानते थे कि यदि उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो उन्हें महासभा की सदस्यता से निकाल दिया जाएगा। उन्हें आशा थी कि महासभा में रहते हुए अपने प्रभाव से यीशु की रक्षा कर सकेंगे। एक समय तो ऐसा लगा कि वे कामयाब हो जाएंगे, परंतु कपटी याजकों ने देखा कि वे मसीह का पक्ष ले रहे हैं तो उन्होंने अपनी योजना को उनसे गुप्त रखा। उनकी गैर हाजिरी में यीशु पर मुकदमा चलाकर उसे क्रूस पर चढ़वा दिया था। अब यीशु मर चुका था। अब वे अपने आप को उससे संबंध रखने को छिपा ना सके, जबकि यीशु के चेले खुलम खुला अपने आप को उसका अनुयायी बताने से डर रहे थे। यूसुफ और निकोदिमस बड़े साहस के साथ उनकी मदद के लिए आगे आए। दुख की इस घड़ी में इन धनवानों और सम्मानित व्यक्तियों के मदद की बड़ी जरूरत थी। जो कुछ अपने मृत गुरु के लिए उन्होंने किया, उन गरीब चेलों के लिए वह सब करना बहुत ही कठिन था और उनके धन और प्रभाव के कारण बहुत सीमा तक याजकों और अधिकारियों की जलन से उनकी रक्षा हो सकी थी। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपने हाथों से उन्होंने यीशु की लाश को क्रूस से नीचे उतारा। जब उन्होंने घायल और कटी कटी दशा में उसके शरीर को देखा तो उनकी आंखों से सहानुभूति के आंसू उमड़ पड़े। यूसुफ के पास चट्टान में खुदी हुई एक नई कब्र थी। इसे उसने अपने लिए सुरक्षित कर रखा था, परंतु यह कब्र कलवरी के नजदीक ही थी और अब उसने उसे यीशु के लिए तैयार कर दिया। जो मसाले निकोदिमस लाया था उसे यीशु के शरीर के साथ कोरे कपड़े में बड़ी सावधानी के साथ लपेट दिया था और उद्धारकर्ता को कब्र में रख दिया गया था। वहां तीनों चेलों ने अकड़े हुए शरीर को सीधा किया और दोनों हाथों को जोड़कर छाती पर रख दिया। गलीली स्त्रियां आकर देख गई कि जो कुछ उनके प्रिय गुरु के लिए करना चाहिए था वह सब किया गया और तब उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर कब्र के मुहाने पर रख दिया गया है और मुक्तिदाता को विश्राम करने के लिए वहां छोड़ दिया गया था। ये स्त्रियां क्रूस के पास अंत तक थी और अब कब्र के पास भी अंत में वही थी। जबकि शाम की साया घिरने लगी थी, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम अपने प्रभु के विश्राम स्थल के पास रुक गईं। अपने प्रिय की इस दशा पर शोक के आंसू बहा रही थी और लौटकर सबत के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया, जैसा हम पाते हैं लुका 23:56। यीशु को यूसुफ का कब्र में रखा गया, वह हमारे लिए वहां विश्राम कर रहा था। उद्धार का काम पूरा हो गया था और शांति से वहां विश्राम कर रहा था। अब उसका जी उठने का इंतजार था। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे जब हम फिर से आने के बाद जोहते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तो ग्रहण कर, हम सबों को स्वीकार कर। हम यीशु मसीह के मरने और हमारे लिए जान देने के लिए धन्यवाद देते हैं। वह कब्र से जी भी उठा पिता, उसको हम विश्वास करते हैं। हमें तो ग्रहण कर और हमें उद्धार दे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुना दया से ग्रहण कर, आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।